ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ரிதம் ஒதிஷ்யாமி, ஆகிய சத்தியம் ஒதிஷ்யாமி. सत्यम ओदिश्यामि का मतलब है मनुष्य सदा सत्य का ही चिंतन करो. तो ऋतम ओदिश्यामि मतलब वाचिक सत्य, और सत्यम शब्द का मतलब मन में भी मैं सत्य का ही चिंतन करो. जैसा वाणी सत्य बोल रही है वैसा मन से भी सत्य चिंतन करो. तो इसलिए यहां दो कहा, सत्यम ऋतम ओदिश्यामि, सत्यम ओदिश्यामि. तन माम अवतु, और तद बोलतो ब्रह्मा. जहां भी तत्शब्द होता है सर्वनाम पद, सर्वनाम पद वो सर्व का ही बोधक होता है, क्योंकि एक सर्वनाम होता है. सर्व कोई अलग नहीं, सर्व परमात्मा है, बाकी सब परिच्छिन्न है. इसलिए सर्वनाम पद के द्वारा सदा उसी को ही बोध किया जाता है. तत्वमसि में देखे तत् सर्वनाम पद है, इसलिए यहां बता रहे तद मतलब वो जो ब्रह्म है, वो आत्मा है, जो चैतन्य है. माम अवतु, मेरी रक्षा करे. तो मेरी रक्षा करे इसका मतलब मुझे स्वस्थ रखे, क्योंकि स्वस्थ के बिना आप मस्त नहीं हो सकते हैं. यदि मस्त होना है आपको स्वस्थ होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, मन से मस्त होना चाहिए. शरीर यदि स्वस्थ रहे आप मन से भी मस्त रहेंगे, नहीं तो अनुभव होता है थोड़ा सा शरीर ढीला हो गया, स्वाध्याय छूट जाता है, चिंतन छूट जाता है, प्रमाद उत्पन्न हो जाता है. इसलिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए. इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. शरीर एक माध्यम है भगवान ने दिया, इसलिए शरीर मिथ्या भी है अपवित्र है ऐसी बात नहीं है. ये होने पर भी शरीर से आप बहुत कुछ निकल सकते हैं, इसका मंथन करके इसे आप हीरा भी निकल सकते हैं. यदि मंथन नहीं करेंगे तो विष भी मिलेगा. जैसा समुद्र मंथन में देखे पहले वहां विष निकला, वैसे ही शरीर में पहले विष निकलेगा, और भी आप आगे बढ़ेंगे वहां अमृत तत्व आपको मिलेगा. तो इसलिए यहां बता रहे वह मेरा रक्षा करे, क्योंकि मैं स्वस्थ रहूं तभी जाके श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस तत्व में स्थित हो सकते. केवल इतना ही नहीं, मैं यदि स्वस्थ हो बताने वाला आचार्य बीमार हो क्या करे. इसलिए वक्तारम अर्थात जो वक्ता है आचार्य है उसकी भी रक्षा करे. अवतु माम, अवतु माम, मेरी रक्षा करे और मेरा आचार्य की भी रक्षा करे. ये प्रार्थना कर रहे जिज्ञासु शिष्य साधक. तीन बार यहां शांति बोल रहे, शांति शांति शांति. आप लोग जानते हैं सारा जगत त्रिगुणात्मक है, हर एक व्यक्ति तीन तापों से ग्रसित है. कौन नहीं तापों से ग्रसित? आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, तीन तापों से ग्रसित है. अधिभौतिक जो ताप है अर्थात ये भूतों के द्वारा, भूतों का जो विकार है उसको कहते हैं अधिभौतिक. जैसा आजकल डेंगू आ रहे खूब, चिकनगुनिया मच्छरों से आ रहे हैं. आप ध्यान में बैठ गए, मच्छर आके आपको काटने लग गए, आपका मन को खिंचा दिया, अथवा कोई कीड़े है अथवा अन्य है जीव, सांप आ गया वहां से उठ के भागने पर, ये सब ताप है, अरे भौतिक है, भूतों से। अथवा आप ध्यान करने बैठ गए, दूसरा आ गया चिल्लाने लगा, अथवा जोर जोर से कोई माइक लगा दिया, ये ताप आ रहा है आपका साधना में, ये अरे भौतिक हो गया। और दूसरा एक ताप है अरे दैविक ताप है, वो देवतों के द्वारा अरे दैविक कहते हैं, देवतम अधिकृत्य देवता संबंधी उसको अधिदैविक कहते हैं। जैसा झंझावट आ गया, तूफान आ गया, आंधी है, धूप है, ये देवता संबंधित। आप ध्यान में बैठ गए, खूब हवा आ गई, आंधी आ गई, धूल आ गया, आपके आंख में घुस गया, ये सब देवता संबंधित आप है, इससे भी हम ग्रसित हैं। तीसरा ताप है आध्यात्मिक, आत्मानम शरीरम अधिकृत्या, आत्मा का मतलब शरीर, तो शरीर संबंधी उसको कहते हैं आध्यात्म। अब ये भी दो प्रकार का ताप है, एक आदि और एक व्याधि, आदि से भी ग्रसित है, व्याधि से भी ग्रसित है। आदि कहते हैं मानसिक दुख को, मानसिक ताप को आदि कहते हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद भी नहीं आती, ये टेंशन और डिप्रेशन आया कहां से पता नहीं, बाहर से आया होगा, बाहर से आगे घुस गया होगा, घुसा भी नहीं कहां से घुसा, छिद्र होना चाहिए, मान लिया केवल बस हो गया वहां से काम। जब तक ये टेंशन और डिप्रेशन जब तक रहेंगे आप मन से स्वस्थ नहीं रहेंगे, मन ही स्वस्थ यदि नहीं रहे आप चिंतन क्या करेंगे। एक साधन है हमारे पास भगवान को चिंतन करने के, भाई कोई है ही नहीं, उसी को ही हम खराब किया। पहले दिन भी एक दिन बताए थे, मन है पुष्प है, भगवान को चढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही वस्तु है मन, उसको ठीक से रखना चाहिए। यदि डिप्रेशन आता है क्यों आता है, टेंशन आता है क्यों आता है, यदि आ भी गया आप टेंशन किया, क्या वो हटेगा, नहीं हटेगा, समय आने पर ही हटेगा, आपको प्रयत्न तो अवश्य करना है, किंतु डिप्रेशन और टेंशन के तो प्रयत्न जो कर्तव्य से पे भटक जाएंगे। जैसा मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति पढ़ रहा है, परीक्षा देने जाते हुए उसके अंदर फीलिंग हो गई, टेंशन आ गया, पढ़ा हुआ भी वो भूल जाएगा, क्या लिखना है उसको पता ही नहीं मालूम पड़ेगा, इधर का उधर लिखेंगे। इसलिए कहते जो डर गया वो मर गया, तो इसलिए मन को ठीक रखना चाहिए। ये मानसिक जो रोग है उसको कहते हैं आदि, इसलिए अधिक से अधिक लोग डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। कारण क्यों है, कारण ये है, अनात्मा विषय को ऐसा हमने भर दिया और उसको हटाना नहीं चाह रहे, और हटाने का जो साधन है उसको अपनाया ही नहीं, तो इसलिए जो आदि है ये आध्यात्मिक में मानसिक दुख का मान। दूसरे एक है व्याधि, शरीर संबंधी, सप्त धातु से ये शरीर बना है तो भी मूलतः त्रिदोष माना है इसमें, वात पित्त और कफ, तो ये वात पित्त कप यदि समान रहे तो उसको बोलते स्वस्थ है। क्या तुम आप स्वस्थ हो, स्वस्थ का दो अर्थ है, एक शरीर को लेके पूछ रहे, एक स्वस्मिन तिष्ठते अपना स्वरूप में स्थित, वो स्वस्थता है, वो आगे की बात है। तो वात पित्त कप से जो आ रहे, वात बिगड़ने से भी रोग आता है, पित्त बिगड़ने से भी रोग आता है, कफ बिगड़ने से भी रोग आता है, इनमें जो विषमता हो रही है, तभी शरीर में हमारे ताप आ जाता है, इसको बोलते हैं शारीरिक। तो आध्यात्मिक में दो हो गए, एक मानसिक और एक शारीरिक। इन सबसे ग्रसित है हर एक व्यक्ति, इसलिए यहां बता रहे तीन। देखिए अधिभौतिक भी वही टिका है। मान लीजिए आपने खूब महल ऊंचे से ऊंचे मंजिल चढ़ा दिया, नीचे का यदि फाउंडेशन ठीक ना हो, थोड़े से हिलने से गिर जाएगा। अधिभौतिक में आप जितने उड़ान भरते उतना ही दुखी हो जाएंगे, निश्चय है। यदि आपका फाउंडेशन आध्यात्मिक ठीक है, आप कितना भी उड़ान भरो, आप दुखी नहीं होंगे। जैसे कोई मकान बनाते हैं मंजिलों से मंजिलों पर देके, मकान के अंदर एक जो लोहा आदि डालते हैं मजबूत, ये है आदिदैविक के समान। और नीचे का जो फाउंडेशन है वो आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक फाउंडेशन यदि आपका मजबूत है, उसके ऊपर आदिदैविक है, उसके बाद आदिभौतिक में आप उड़ान भर दीजिए, कितना भी उड़ान भरेंगे नीचे नहीं गिरेंगे। किंतु हो रहे उल्टा, अधिभौतिक में खूब उड़ान भर रहे, आध्यात्मिक बल है नहीं, इसलिए थोड़े में दुखी होते हैं, सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं। सीता को कितना कष्ट आ गया, क्या सीता ने कभी सोचा मैं जाके प्राण त्यागू करके? कभी नहीं सोचा। हरिश्चंद्र का पत्नी को लेकर इतने कष्ट आ गया गंगा किनारे, कभी गंगा जी में कूदने का सोचा भी नहीं उन्होंने। राजा नल की पत्नी लेके दमयंती को इतना कष्ट आ गया, कभी आत्महत्या नहीं किया। क्यों? उनके पीछे आध्यात्मिक बल था। आज थोड़ा सा कुछ हो गया तुरंत जाके आत्महत्या करेंगे, थोड़ा सा झगड़ा हो गया सहन नहीं किया, या रेलवे के नीचे दर जाके गिर जाते। कारण क्यों? हमारा नीचे का जो फाउंडेशन है आध्यात्मिक, वो कमजोर है। ये मजबूत करवाएगा केवल शास्त्र ही कर सकता है। तो इसलिए ये तीन तापों से हरेक व्यक्ति ग्रसित है। इसके लिए शांति शांति बता रहे, अथवा कायिक वाचिक मानसिक, तीनों में दोष है हमारा। शरीर से भी दोष हो रहे, जैसा हम चल रहे, कभी जान करके कभी अनजान से पैर के नीचे कीड़े आ गए मर रहे, हम वाणी से बोल रहे कभी जान पूछ कर को दुखी दे रहे, कभी अनजान से ऐसा फिसल गए वाणी तभी भी दे रहे, मन से भी सोच रहे। तो कायिक वाचिक मानसिक इससे भी हो रहे, इसके लिए भी यहां बता रहे तीन प्रकार की शांति। इसलिए देखे विष्णु सहस्र नाम में ध्यायन नमस्चन स्वस्थ वहां आया है, ध्यान नमस्कार और स्तुति, तो तीनों आपका ही कर रहे। नमस्कार कर रहे स्थूल शरीर से और स्तुति कर रहे वाणी के द्वारा और ध्यान कर रहे मन के द्वारा। तो विष्णु सहस्र में पांचवें श्लोक में बता दिया। तो इसलिए यहां बता रहे तीन प्रकार का जो ताप है, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक अथवा कायिक वाचिक मानसिक, ये शांति हो जावे। मान लीजिए हम शांति शांति कहने से रट लगने से नहीं होगा। वेक जोड़ामणि में भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा दिया है, जैसा किसी को रोग आ गया, रोगी व्यक्ति को यदि कहे औषध है औषध है औषध है कहने से आपका रोग निवृत्त नहीं होगा, उस औषध को आपको खाना पड़ेगा। ठीक है आप औषध खा भी लिया परहेज नहीं किया, डॉक्टर बेचारा क्या करेगा। डॉक्टर तो बढ़िया बढ़िया दवा दे रहे, जैसा किसी को शुगर हो गया, डायबिटीज, डॉक्टर ने दिया दवा, बोल तो मीठा मत खाओ, मीठा खाना नहीं छोड़ दिया, डॉक्टर दवा दे रहे आपका शुगर कम नहीं हो रहा, डॉक्टर क्या करेंगे। इसलिए दवा के साथ साथ परहेज भी होना चाहिए, पथ्या कहते हैं। तो इसलिए केवल दवा दवा खाने से रोग निवृत्त नहीं होता है, वैसे ही ब्रह्म ब्रह्म कहने से ही आप ब्रह्म नहीं बन सकते। इसी प्रकार शांति शांति कहने से शांति नहीं मिल सकती, तो उसको वैसे ही आपको व्यवहार करना पड़ेगा, शांति का उपाय खोजना पड़ेगा। अशांति आई क्यों है? यदि आई है अवश्य जाएगा। हमारा स्वरूप है शांत स्वरूप है, ब्रह्म का एक नाम शांतम निरंजनम, शांत है हम, किंतु अशांति आई कहां से, किस कारण से आई, ये हम विचार नहीं करते। उस कारण को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए यहां प्रार्थना कर रहा, ऐसा नहीं प्रार्थना में भी बल है ये मत सोचिए, किंतु वो प्रार्थना है आपका अंतस्थ स्पर्श होकर प्रार्थना करें। दो प्रकार की प्रार्थना होती है, एक तो आप गले के ऊपर ऊपर से करते हैं, बस सब कर रहे मैं भी करूंगा। एक तो आप अंतस्थ, मतलब आपका मन तदाकार होकर वाणी के साथ स्पर्श होके कर रहे, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, प्रार्थना में भी सामर्थ्य है। किंतु वो प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए शुद्ध भाव से, तभी हमारे शास्त्र बता रहे शब्द में भी शक्ति है करके। तो इसलिए यहां तीन बार बार रहे ओम शांति शांति शांति। आगे जो है यहां मंत्र प्रारंभ हो रहे, तो पहले ही मैंने कहा दिया था सारा उपनिषद हो अथवा सारा शास्त्र का एक ही लक्ष्य है, अज्ञान को निवारण करना, दुख का कारण है उसको निवृत्त करना, आत्म तत्व की प्राप्ति है नहीं, स्वतः सिद्ध है वो, उसको सिद्ध नहीं करना। तो इसलिए मैंने कहा जाता है दुख का कारण है अज्ञान, अज्ञान के कारण ही दुख हो रहे हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण हमारे अंदर अविवेक हो गया, अविवेक से ही हम अभिमान करते हैं, अभिमान के कारण ही राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष से ही हम कर्म करते हैं या पुण्य और पाप, उससे शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर के साथ संबंध होने से हम दुखी होते। तो मूल कारण है दुख का अज्ञान, उस अज्ञान में भी हमने बताया था मूल अज्ञान में दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति आपको दुख नहीं देता, विक्षेप शक्ति दुख देता है। जागृत में भी विक्षेप शक्ति है, स्वप्न में भी विक्षेप शक्ति काम कर रहे है, आवरण शक्ति तो है ही है, किंतु आवरण के साथ साथ विक्षेप शक्ति। इसलिए जागृत और स्वप्न में जीव सबसे ज्यादा दुखी होता है, सुषुप्ति में वहां विक्षेप शक्ति नहीं रहती है, केवल आवरण शक्ति रहती है, वहां तत्व का तो ज्ञान नहीं होता किंतु दुखी भी नहीं होता है। तो इसलिए जो अज्ञान ही कारण है दुख आदि के लिए, उसके लिए निवारण करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, और किसी साधन से आप नहीं हटा सकते, कल ही कहा दिया था, सामने किताब है उसको देखने के लिए आपको कोई यम नियम जरूरत नहीं, आंख खोल दिया, अभी आंख ठीक है खोल दिया, पुस्तक का ज्ञान हो गया। वैसे ही अपने को जानने के लिए कोई यम नियम चाहिए क्या? कोई नहीं है, यम नियम कुछ नहीं है, मैं हूं ये ज्ञान। किंतु आपका प्रमाण ठीक होना चाहिए, जानने का साधन यदि ठीक हो, इसके लिए सब साधन है, जानने का साधन को ठीक करने के लिए। जैसा किताब को देखने के लिए आंख खोल दीजिए, आपकी आंख खराब है उसको आंख को ठीक करना पड़ेगा, या तो दवा डाल दीजिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैसे ही अपने को जानने के लिए आपके पास प्रमाण, यह कोई प्रमाण अलग नहीं है, शास्त्र जो बताते हैं वो अखंडाकार वृत्ति ही प्रमाण बन जाती है। वो जो अखंडाकार वृत्ति ही अज्ञान को नाश करते हैं, तभी अपना स्वरूप को। इसके लिए यहां श्रुति उस आत्म तत्व को बताने जा रहे हैं। जो आत्म तत्व है अवांग मनस गोचर है, तो इसलिए यहां अध्यारोप और अपवाद के द्वारा समझाने जा रहे हैं। पहले भी एक दिन मैंने दृष्टांत दिया था, पहले आरोप करना पड़ेगा बाद में निषेध करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां देखिए पहला वाला मंत्र, आत्मा वा इदमेका एवाग्र आशीत् नान्यत् किंचन मिषत् स एक्षत लोकान्नो सृजायते। यहां श्रुति बता रहे आत्मा व इदमेका एव अग्रे आशी, केवल आत्मा ही एक था। आत्मा किसको कहते हैं? सारे जो श्रुति है आत्मा की ही व्याख्या कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार जी ने भी यहां संकेत किया, क्षुधा पिपासा से रहित, ये छह ऊर्मी माना है। ऊर्मी का मतलब है तरंग, जैसा समुन्द्र में तरंग आते वैसे ही ये ऊर्मी माना है। छह कौन है? क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोहको जन्म मृत्यु शरीरस्य षडूर्मी रहितो शिवः। ये शिव है, आत्मा है। सबसे पहले दो ऊर्मी है भूख और प्यास। ये भूख और प्यास है किसका धर्म? प्राण का धर्म है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक भूख और प्यास। मुर्दा पड़ा है, आप लड्डू रख दिया मुंह में खाओ करके, वो खाएगा नहीं क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं। तो ये भूख और प्यास है प्राण की धर्म। किंतु बोलते क्या, मैं भूखा मैं प्यासा, मैं में डाल दिया, आत्मा में डाल दिया अपने। आत्मा भूखा और प्यासा नहीं, अरे भूख और प्यास को देखने वाले आप है। आप कैसा भूख हो सकते? आप दृष्टा है, उसको देख रहे किंतु बोलते मैं भूखा। प्यास लग रहे उसका ज्ञान भी आपको हो रहे, भूख लग रही उसका ज्ञान भी आपको हो रहे किंतु मान रहे मैं भूखा मैं प्यासा। बस यही अध्यास है, यही अविद्या है, और क्या। आप दृष्टा है उसको भोक्ता बना दिया, ये प्राण का दो धर्म अपने अंदर डाल दिया। उसी प्रकार मन के और शरीर के हम लोग कल विचार करें। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।